आज अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी करने के लिए डेविड उसे पेरिस ले गया था। पेरिस में अच्छी तरह घूमने के बाद डेविड होटल रूम में आनंद ले रहा था। ठीक उसी वक्त वसुंधरा के कहने पर रंजीत ने डेविड को कॉल किया। इससे डेविड का पारा चढ़ गया, क्योंकि उस वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और रंजीत का कॉल उसे बेहद बुरा लगा। वो कॉल पर बोला, नेक्स्ट ट्रिप हमारा इंडिया का है, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इंडिया घुमाने ले जा रहा हूँ और नेक्स्ट वीक ही मैं अरमान सिंघानिया का नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहते हुए डेविड बुरी तरह हंसा। डेविड दिखने में एकदम सफ़ेद और मजबूत इंसान था। उसके पूरे बाजू पर टैटू बने हुए थे। उसका लुक बेहद डरावना था। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने पीछे से आकर उसे हग किया। डेविड ने अपने होंठ उसके होठों से जोड़ दिए और फिर उसे प्यार करने लगा। रंजीत ने डेविड की सारी बातें वसुंधरा को बता दी। वसुंधरा बोली, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मौज मस्ती करने आ रहा है, या फिर हमारा काम करने के लिए आ रहा है? हमने उसे पूरे 5 करोड़ रुपए दिए हैं, वो हमने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी करने के लिए नहीं दिए हैं। रंजीत ने वसुंधरा को समझाते हुए कहा, मैडम आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि वो कितना बड़ा सनकी आदमी है, और अगर वो अरमान की जान लेने के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें इससे कोई एतराज़ होना चाहिए, और वैसे भी हमें आम खाने चाहिए, गुठली से मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हुए रंजीत वसुंधरा को समझाने की कोशिश करने लगा। वसुंधरा ने रंजीत की बात मान ली। मारिया, जो डेविड की गर्लफ्रेंड थी, उसने डेविड की बातें सुन ली थीं। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव आ गए थे। हालांकि उस वक्त वो बेड में डेविड के साथ थी और वो डेविड को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब उसने डेविड की कॉल पर बात सुनी और ये सुना कि डेविड इंडिया जाकर अरमान सिंघानिया को मारना चाहता है, तब उसके चेहरे के भाव तुरंत डार्क और अलग हो गए, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। दूसरी ओर अरमान सिंघानिया ने खुद पूरे शहर की गलियों को छान मारा था। इतना ही नहीं, प्राइवेट चॉपर में बैठकर अरमान ने पूरे शहर को अपने कैमरे से देखना शुरू कर दिया था। पूरे शहर में ड्रोन उड़ाए जा रहे थे ताकि आस्था की जानकारी निकाली जा सके। शहर की पूरी पुलिस फोर्स उस वक्त सकते में आ गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जिस तरह से आस्था को ढूंढा जा रहा था, ऐसा लगने लगा था मानो कहीं से बहुत बड़े आतंकवादी आकर छुप गए हों और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस वालों ने चारों तरफ से नाकाबंदी की हो, ड्रोन उड़ाए जा रहे हों और चॉपर वगैरह की मदद से पूरे शहर में देखने की कोशिश की जा रही हो। इस वक्त बिल्कुल वैसा ही मंजर सा चल रहा था। अरमान के कानों में सिर्फ दादाजी की कही हुई बातें गूंज रही थीं कि अगर आस्था का बाल भी बांका हुआ तो दादाजी हमेशा हमेशा के लिए अरमान से अपना रिश्ता तोड़ देंगे। ये बात उसके दिल में बेहद दर्द दे गई थी। जल्दी ही सभी लोग थक हार कर एक तरफ खड़े हो गए थे। ना तो डेविल किंग की वर्ल्ड बेस्ट सिक्योरिटी और ना ही अरमान सिंघानिया की सिक्योरिटी आस्था को कहीं ढूंढ पाई थी। तब अरमान ने जोरों से चिल्लाकर कहा, कहाँ गई वो लड़की? उसे जमीन खा गया या आसमान निगल गया? ऐसा कहकर अरमान जोरों से चिल्ला रहा था। अरमान की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर सभी लोगों के हाथों के रोएं खड़े हो गए थे। आहान और ध्रुव उस वक्त काफी दुखी थे, क्योंकि आस्था को वो दिल से अपना चुके थे और उसे अपनी भाभी मानते थे, लेकिन अचानक से आस्था के यूं गायब हो जाने पर उन्हें बहुत ही ज्यादा सदमा लगा था। वो सोच रहे थे कि अगर आस्था के साथ कुछ हो गया होगा तो वो लोग अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। लगभग पूरा दिन निकल चुका था और धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई थी। रात के वक्त एक एक करके वो सब लोग सिंघानिया मेंशन में आ गए थे। यहाँ आस्था को बेहोश हुए 6 से 7 घंटे हो चुके थे। ऊपर से उसने बेहोश होने से पहले खाया पिया भी नहीं था। अरमान सिंघानिया की आंखों में खून उतर आया था। वो उस वक्त बड़ा ही खतरनाक और वाइल्ड दिखाई दे रहा था। जैसे ही अरमान वहां आया, उसकी नजर सबसे पहले दादाजी पर पड़ी, जो कि हॉल में रश्मि के साथ बैठे हुए थे। रश्मि ने जैसे ही अरमान और बाकी सबको वहां आया हुआ देखा, वो तुरंत दौड़कर अरमान के पास गई और घबरा कर बोली, अरमान कुछ पता चला? कहाँ है आस्था? अरमान जवाब दो, कहाँ है आस्था? अब अरमान का पारा और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अरमान सिंघानिया की टीम के साथ साथ डेविल किंग की टीम ने मिलकर आस्था को पूरे शहर में ढूंढने की कोशिश की थी और वो उन्हें कहीं नहीं मिली थी। आस्था का नामो निशान तक किसी को पता नहीं चला था। इन सब चक्करों में एक चीज वो सब लोग पूरी तरह से मिस कर चुके थे, वो थी सीसीटीवी फुटेज। किसी ने भी एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश नहीं की थी कि आस्था कब और कितने बजे घर से निकली थी। इन सबके बीच सीसीटीवी फुटेज अगर किसी को याद आई थी तो वो था उस घर का नौकर राजेश। वो सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर आया और सबको शरबत देने लगा, लेकिन अरमान को शरबत देने की उसमें हिम्मत नहीं थी। फिर वो आहान के सामने जाकर खड़ा हुआ और शरबत देते हुए बोला, आहान बाबा, आखिर मेम साहिबा कितने बजे घर से निकली थी? क्या ये सब सीसीटीवी फुटेज में पता नहीं चला? राजेश ने जैसे ही अनजाने में सीसीटीवी फुटेज का नाम लिया, वहां का माहौल अचानक बदल गया। आहान ने झट उसे पकड़कर उसके माथे को चूमा और बोला, वाह मेरे शेर, तूने क्या याद दिला दिया। फटाफट से वो सभी सिक्योरिटी रूम की ओर गए, जहां सीसीटीवी की पूरी डिटेल्स लाइव कवरेज होती थी और सारा डेटाबेस वहीं मौजूद रहता था। अरमान भी उस वक्त वहां मौजूद था, क्योंकि वो भी अब सिर्फ फुटेज देखना चाहता था। तब हर कोई अब अपने आप को रिग्रेट कर रहा था कि आखिरकार वो लोग इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि आस्था मिसिंग है तो सभी उसे ढूंढने लग गए, लेकिन एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि आस्था कहाँ हो सकती है। दादाजी, रश्मि, सभी लोग उस वक्त सिक्योरिटी रूम में जमा थे और सबकी नजरें उस बड़ी सी LED स्क्रीन की ओर देख रही थी जहां पर सुबह के 9 बजे के बाद की फुटेज लाइव चल रही थी, और जल्दी ही उसमें आस्था दिखाई दी जो कि डॉक्टर रश्मि के कमरे में जा रही थी। एक पल आस्था कमरे में तो गई थी, लेकिन उसके बाद वो वहां से निकलकर हॉल में आई थी। हॉल में भी उसे कोई नहीं मिला था। तब आस्था बेमन से गार्डन की ओर जाने लगी थी। आस्था के चेहरे पर काफी उदासी थी जो CCTV फुटेज में भी साफ दिखाई दे रही थी। जल्दी ही आस्था हॉल में से होते हुए गार्डन में चली गई थी और पोल साइड एरिया में जो कैमरा लगा हुआ था वहां पर सबको आस्था बैठी हुई दिखाई दी। लेकिन कुछ ही देर बाद आस्था जैसे ही उठकर वहां से चलने लगी वो बेहोश हो गई थी। ये फुटेज देखकर वो सभी सदमे में आ गए और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक दूसरे को देखने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हो, मानो कहना चाह रहे हो, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, अन्नू आपकी लाइन याद आ गई थी सो ऐड कर दी। और जल्दी से सब सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलकर बाहर की ओर दौड़े। अरमान भी बिना कुछ सोचे सबसे पहले तुरंत दौड़कर गार्डन की ओर जाने लगा। अरमान के ठीक पीछे सुमित, आकाश, आहान वो सब भी दौड़कर गार्डन की ओर जा रहे थे, और रश्मि दादाजी को संभालते हुए वो दोनों भी अब गार्डन की ओर जाने लगे थे। अरमान बेहद तेजी से पूल साइड के एरिया पर गया और जल्दी ही उसकी नजर आस्था पर पड़ी जो कि उस वक्त गार्डन के पूल साइड बैक साइड एरिया में बेहोश पड़ी हुई थी। अरमान जोरों से चिल्लाया, आस्था! उसने फटाफट से उसे अपनी गोद में उठाया और मेंशन के अंदर ले गया, उसे सोफे पर लिटा दिया और जुनून भरी आवाज में चिल्लाकर बोला, रश्मि आस्था का जल्दी से ट्रीटमेंट करो।
तब डॉक्टर रश्मि के डर से हाथ पैर काफी ज्यादा फूल गए थे, लेकिन उसने पहले राजेश को अपने कमरे से अपनी फर्स्ट एड किट्स बॉक्स लाने के लिए बोल दिया था। रश्मि आस्था को हॉल में लेटाने पर उसे चेक करने लगी थी, लेकिन इस तरह से सोफे पर आस्था को सही से चेक नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अरमान से बोला, मुझे आस्था का प्रॉपर्ली पूरा चेकअप करना होगा, इसके लिए आपको इसे किसी कमरे के बेड में शिफ्ट करवाना होगा। रश्मि की बात सुनकर अरमान ने तुरंत आस्था को एक बार फिर गोद में उठा लिया। वो बड़ी ही इंटेंस और दर्द भरी नजरों से आस्था की ओर देख रहा था। बार बार उसकी नजरें आस्था पर जाकर ठहर रही थीं। वो आस्था को गोद में लेने के बाद जल्दी से डॉक्टर रश्मि के कमरे में बेड पर आस्था को लिटा दिया और खुद बाहर आकर खड़ा हो गया। वहीं दादाजी उस वक्त केवल दुख भरे चेहरे के साथ सब कुछ देख रहे थे। अंदर ही अंदर वो इस बात से भी डर रहे थे कि अगर आस्था को कुछ हो गया तो वो किसी को क्या जवाब देंगे। डॉक्टर रश्मि अच्छी तरह से आस्था का चेकअप करने लगी थी। जल्दी ही डॉक्टर रश्मि को आस्था के शरीर पर बने हुए कुछ निशान दिखाई दिए। तब डॉक्टर रश्मि जैसे ही आस्था के कपड़ों को थोड़ा सा ओपन करके आस्था के शरीर को चेक करना शुरू किया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आस्था के पूरे शरीर पर अरमान सिंघानिया के काटने के बाइट्स के निशान मौजूद थे। कुछ कुछ बाइट्स में से तो खून भी निकल रहा था जो आस्था के लगाए हुए मेकअप से भी बाहर दिखाई दे रहा था। अब तो रश्मि का गुस्से और नफरत से बुरा हाल हो चुका था। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अरमान इतनी ज्यादा घटिया हरकत करेगा और आस्था के साथ इस तरह की जबरदस्ती करेगा। लेकिन फिलहाल आस्था को अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर रश्मि ने उसे कुछ इंजेक्शन दिए और उसे प्रॉपरली रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आस्था उस वक्त सारी चीजें सोच सोचकर बेहोश हो गई थी, वरना और कोई वजह नहीं थी बेहोश होने की। उसके शरीर में बेहिसाब दर्द था और दर्द भी उसके बेहोश होने की एक वजह थी। जल्दी ही डॉक्टर रश्मि आस्था को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करने के बाद और उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद वहां से गहरी सांस लेते हुए बाहर आईं। सभी लोग दुख भरे एक्सप्रेशन से डॉक्टर रश्मि की ओर देख रहे थे। तब डॉक्टर रश्मि ने उन सब की ओर देखकर बोला, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि शायद आस्था किसी बात को लेकर बेहद परेशान थी जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई थी। ऊपर से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अभी के लिए मैंने उसे कुछ विटामिन के इंजेक्शन दिए हैं जिससे उसे थोड़ी ताकत मिलेगी और कुछ देर बाद उसका होश भी आ जाएगा। ऐसा कहकर डॉक्टर रश्मि उदासी भरी निगाहों से और डीप लुक से अरमान की ओर देखते हुए वापस आस्था के कमरे में जाने लगी थी। वहीं आकाश डॉक्टर रश्मि की आंखों में नफरत देख चुका था और साथ ही साथ उसका अरमान को इस तरह से घूर कर देखना भी वो समझ चुका था। तब डॉक्टर रश्मि कमरे में जाने से पहले रुकी और अरमान से बोली, अरमान मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज आइए। ऐसा कहकर वो कमरे में चली गई थी। डॉक्टर रश्मि के जाने के बाद अरमान ने एक नज़र दादाजी की ओर देखा और उसके बाद डॉक्टर रश्मि के साथ अंदर चला गया था। तब डॉक्टर रश्मि जो कि अरमान के ठीक सामने खड़ी हुई थी, अरमान ने रश्मि की आंखों में अपने लिए काफी सारे सवाल और नफरत देख लिए थे। अरमान हैरान था और सीरियस वॉइस में बोला, रश्मि क्यों बुलाया है तुमने मुझे? तब डॉक्टर रश्मि बोली, तुम जानते हो तुमने जो घटिया हरकत आस्था के साथ की है उसके बाद से उसकी जान भी जा सकती थी। तुमने उसे इतना ज्यादा डरा दिया है जिसकी वजह से आज उसकी ये हालात हो गई हैं। वो तुम्हारी बीवी है और तुमने उसके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सुलूक किया। तब अरमान गुस्से से रश्मि की ओर देखकर बोला, ये क्या कह रही हो तुम, मैंने क्या किया है? तब रश्मि गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम जानना चाहते हो तुमने क्या किया? ऐसा बोलकर रश्मि ने अरमान का हाथ पकड़ा और जिस बेड पर उसने आस्था का ट्रीटमेंट किया था उस बेड के पास ले गई और आस्था के जो निशान डॉक्टर रश्मि ने देखे थे वो निशान अरमान को दिखा दिए। दिल मिलाते हुए बोली, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से उसके शरीर पर इतने सारे जख्म हैं। आखिरकार क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? मैंने आस्था को प्रॉपर्ली चेक किया है, उसका रेप नहीं हुआ है, लेकिन ये एक रेप अटेम्प्ट था। तुमने आस्था पर रेप अटेम्प्ट किया है जिसके कारण वो इस तरह से अनकॉन्शियस हो गई। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने अरमान के ठीक सामने से रेपिस्ट कहा, अरमान का बिहेवियर एकदम खतरनाक हो चुका था और वो डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया को रेपिस्ट कहने की? लगता है डॉक्टर रश्मि तुम्हें इस वक्त अपनी जान प्यारी नहीं है। तब डॉक्टर रश्मि लगभग चिल्लाते हुए बोली, नहीं है मुझे अपनी जान प्यारी, तुम आस्था के साथ ऐसी घटिया हरकत करोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरमान सिंघानिया, मैं एक बार नहीं तुम्हें 100 बार बोलूंगी, तुम रेपिस्ट हो, रेपिस्ट, रेपिस्ट, रेपिस्ट। जैसे ही रश्मि ने लगातार अपने जुनून में अरमान को ये कहा, अरमान का ऑरा बेहद डेंजर हो चुका था। उसने अपने हाथों को अपने सर पर रखा और अचानक रश्मि का गला पकड़कर उसे दबाना शुरू कर दिया। दोस्तों रिव्यू दीजिए प्लीज, और आकाश और रश्मि की केमिस्ट्री कैसी लग रही है जरूर बताएं।